नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आपने मेरी पिछली 6 कहानी को सुना हो और आशा करती हूँ कि आपको पसंद भी आई होगी। मुझे बेहद खुशी है कि मैं अपनी मैरिड वुमेन 6 कहानी का अगला पार्ट आज आपके सामने लेकर आई हूँ। नए पाठकों को एक बार फिर से अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम रश्मि है और मैं दिल्ली की रहने वाली एक मैरिड लड़की हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 32 साल की है। मैं दिल्ली के एक कॉरपोरेट कंपनी के लिए जॉब करती हूँ। मेरा कद 5 फुट 7 इंच लंबा है और मुझे मेरी हाइट बहुत मस्त लगती है। रंग गोरा है, 34D 28-36 का मेरा सेक्सी फिगर है जो मेरे लंबे कद की वजह से मुझ पर खूब जचता है। अपने स्वभाव को लेकर अगर कुछ कहूँ तो मैं एक सरल और सीधी औरत हूँ। बचपन से पढ़ाकू हूँ और साथ ही साथ अपनी प्राइवेट लाइफ में अब तक मैंने बहुत मज़े लिए हैं। मेरे हस्बैंड का नाम शरद है और वो 38 साल के हैं। वो इनकम टैक्स में सरकारी नौकरी में है और हमारी शादी को लगभग 3 साल हो चुके हैं। जैसा कि आपने मेरी पिछली कहानी में सुना था कि हाल ही में मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हो गया। अब आगे की कहानी सुनिए। हाँ, तो शरद को वहाँ गए हुए ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके थे। इस दौरान वो 2 बार दिल्ली एक एक वीक की छुट्टी लेकर आए थे। शरद के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए जो शुरू के कुछ सप्ताह तो बहुत कठिन लगे। 3 साल में पहली बार मैं और शरद एक दूसरे से इतने लंबे टाइम के लिए अलग रहे थे। मुझे हर रात उनकी बाहों में सोने की आदत थी और उनके न होने से बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता था, खासकर रात को। सच कहूँ तो शरद के द्वारा की हुई मेरी हर जुदाई को मैं लगभग हर रात याद करती थी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने आप को जुदाई के लिए ऐसे तरसते हुए देखा था। हम दोनों लगभग रोज़ रात को घंटों फ़ोन पर बातें करते थे और कभी कभी तो हम फ़ोन सेक्स भी करते थे। हालांकि वक्त के साथ ये सब भी कम हो रहा था। शरद अपने काम में बहुत बिजी हो गए थे और फिर रात को वो थक कर कभी बात करने के मूड में नहीं होते। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी इंसान से सामने बैठकर आप पूरी ज़िंदगी भर बात कर लेंगे, पर वही इंसान अगर आपसे कहीं बहुत दूर बैठा हो और आप दोनों के बीच संपर्क का माध्यम सिर्फ टेलीफोन हो तो एक टाइम के बाद बातें भी ख़त्म सी होने लगती हैं। धीरे धीरे हमारी भी बातें कम होती गईं और कुछ महीनों में हम बस सप्ताह में एक बार एक दूसरे से बातें करते थे। हालांकि इन 6 महीनों में शरद एक सप्ताह की छुट्टी डालकर मुझसे मिलने 2 बार आए थे और दोनों बार हमने पूरे सप्ताह का भरपूर आनंद उठाया। हमेशा की तरह हम अपने फेवरेट रिसॉर्ट गए और मस्ती की। इसके बाद अगली बार जब वो आए तो हम एक हफ्ते के लिए मनाली गए। हम दोनों ने ही एक दूसरे को भरपूर प्यार किया और एक दूसरे से दूर रहने की एक एक कसर को पूरा किया। इन सब के बावजूद मैं अपने जीवन में अजीब सा खालीपन महसूस कर रही थी। कुछ भी करने के बावजूद मैं इसे भर ही नहीं पा रही थी। मैंने अपने आप को काम में इतना मगन कर लिया कि मैं पहले से करीब 50% ज़्यादा देर तक ऑफिस में रहने लगी थी। इस दौरान मैंने शरद के कहने पर असीम को सर्वेंट क्वार्टर से निकालकर घर में रहने को कह दिया। इतने बड़े घर में रात को अकेली सोती थी तो उस बात से मुझे थोड़ा सा डर लगता था। असीम के आने से मुझे महफूज लगने लगा था। उसे मैंने अपना गेस्ट रूम दे दिया। दोस्तों, आप ये कहानी freesexkahani.com पर सुन रहे हैं। हम दोनों अक्सर देर रात तक टीवी देखते और कई बार तो वो टीवी देखते देखते सामने सोफे पर सो जाता था। कभी क्रिकेट का मैच होता था तो कभी किरणदीप और सुरजीत आते थे और हम चारों मिलकर मैच का मज़ा लेते थे। मूड बन जाता तो मैं असीम से कुछ बियर भी लाने को कह देती। कभी अपना मन बहलाने के लिए ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ कोई फिल्म देखने चली जाती या घर पर कोई अच्छी सी किताब पढ़ लेती। मैं ना हर तरीके से अपने आप को व्यस्त करने की कोशिश कर रही थी। और तो और मैं अपने ड्राइवर असीम के साथ कार भी सीख रही थी। कुछ ही दिनों में मैं अच्छी गाड़ी चलाने लगी थी और अक्सर कभी मन किया तो अकेले लंबी ड्राइव पे निकल जाती थी। कभी कभी मैं अपने साथ किरणदीप और सुरजीत को भी ले जाती। हम हम तीनों ही कहीं घूम आते थे। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी रात होते ही फिर से अपने आप को अकेला महसूस करती। कहीं ना कहीं शरद की कमी मुझे खाने लगती थी और मैं आंखें बंद करके उनके साथ अपनी जुदाई के सारे पल याद करती। अक्सर मेरी जोत इन्हीं ख्यालों से गीली हो जाती। हर सिक्के के दो पहलू की तरह, जहाँ एक तरफ मैं अपनी निजी ज़िंदगी से जूझ रही थी, तो दूसरी ओर अपने काम में इस तरह से मगन होने के कारण मेरा सिर्फ 6 महीने के अंतर में ही एक और प्रमोशन हो गया। मैं लगातार 2 महीने तक सबसे उच्चतम मैनेजर के तौर पर चुनी गई थी और सब मेरे काम से बहुत खुश थे, खासकर मेरे बॉस राजीव सर, वो मुझसे बहुत खुश थे। राजीव सर ना करीब 45 साल के तलाकशुदा और बहुत ही आकर्षक पर्सनालिटी के आदमी थे। हमारी कंपनी के वो ब्रांच मैनेजर भी थे। मैं उन्हें करीब 6 साल से जानती थी। 6 साल पहले उन्होंने मुझे नौकरी दिलाई थी, तब से लेकर अब तक वो मेरे जीवन में मेरे मेंटोर यानी मेरे शिक्षक की तरह थे। मैं भी उन्हें उतना ही मानती थी और उन्हें हमेशा अपने काम से प्रभावित करने की कोशिश करती थी। मेरे प्रमोशन की खुशी में उन्होंने मेरे लिए अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी और बस मुझे इनवाइट किया। रविवार की शाम मुझे उनके वहाँ जाना था, तो मैं शाम से तैयारी में लग गई। जल्दी से पार्लर गई, अपने थोड़े से बाल कुछ अलग अंदाज में सेट किए। उस शाम के लिए मैंने ना एक बहुत सुंदर काले रंग की साड़ी पहनने की सोची। उस पर उसी रंग का बेहद सुंदर बैकलेस और स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। तैयार होकर जब मैं निकली तो असीम भी मुझे देखता रह गया। दोस्तों, उस शाम में कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। घर से हम करीब 8 बजे निकल गए और कुछ ही देर में राजीव सर के घर पहुंच गए। मैंने असीम को कुछ पैसे दिए और कहा, मुझे देर हो जाएगी, तुम खा पी लेना और मेरे फ़ोन का वेट करना। मुझे वो ड्रॉप करके चला गया। मेरे आते राजीव सर ने मेरे गले लगकर स्वागत किया और मुस्कुराते हुए मुझे अंदर आने को कहा। वाह रश्मि, बुरा मत मानना, पर आज तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। ओह थैंक यू सर। रश्मि यार प्लीज़, कम से कम अकेले में तो मुझे सर मत कहा करो, बड़ा फॉर्मल सा लगता है। राजीव सर अब भी मेरा हाथ पकड़े हुए थे। वो बोले, आओ आज मैं तुम्हारे पसंद की विस्की लाया हूँ। मैं उनके इस स्वागत से बहुत खुश हो गई और ड्रिंक्स बनाकर बातें करते हुए हम अंदर सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर में माहौल बड़ा हल्का सा हो गया, कैजुअल हो गया। तो थोड़ी ड्रिंक्स के बाद ना हम दोनों बहुत बड़े हंसी मजाक करने लगे। दारू के पैक के साथ साथ 6 साल पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। मैं बहुत दिन बाद ऐसे खुलकर ड्रिंक्स ले रही थी और मज़े कर रही थी। बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि शरद के ट्रांसफ़र के बाद तुमने अपने आप को कैसे संभाला। तो मैंने सारी बातें ना उनको बिना बेझिझक बता दी। भाई मैं उनके इतने करीब थी कि अपनी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी बातें भी उनसे शेयर करती थी और वो भी मुझे अच्छी सलाह देते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी सिचुएशन को अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि तलाकशुदा होने के कारण वो भी तो कई सालों से अकेले थे। तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं तो सिर्फ 6 महीने दूर रहकर इतनी अकेली महसूस करती थी, तो राजीव सर इतने साल से अकेले हैं, उन पर क्या बीतती होगी। उस वक्त उनके बारे में सोचकर मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था। उसके बावजूद अपनी परेशानी दूर रखकर वो मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब लिया और कहा, इतनी खूबसूरत हो तुम, ऐसे रूठा मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ये दिन ऐसे चले जाएंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैं भी बड़े प्यार से उनकी बाहों में समा गई। कुछ देर बाद वो ऐसे मुझसे लिपटे रहे और धीरे धीरे हम फिर यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। शायद ये विस्की का असर था या मेरा वहम, पर बातों ही बातों में वो अपना हाथ मेरी पीठ पर सहला रहे थे। शायद इतने दिनों बाद किसी के छूने का एहसास था या उनके लिए मेरे मन में इज्जत है। किसी एक वजह से मैं उनके छूने को जानकर भी अनदेखा कर रही थी। मैंने हम दोनों के लिए एक एक और पैक बनाया और वो मेरे काफ़ी करीब मुझसे लिपट कर बैठ गए। दोस्तों, अक्सर ऐसे नाजुक से मौक़ों पर बस एक पल का छोटा सा फासला आपकी किस्मत तय करता है, आपकी चुप्पी किसी के लिए न्योते का काम कर देती है। ऐसा नहीं है कि उनका इस कदर छूना मुझे पसंद नहीं आया, पर एक शादीशुदा औरत होने की वजह से मैं अंदर से थोड़ा झिझक रही थी। एक और तो भाई ये सरासर गलत था, पर दूसरी ओर मुझे उनके अकेलेपन का एहसास था। मैं अपने मन में सही और गलत की लड़ाई लड़ ही रही थी कि मेरी ये चुप्पी शायद उनके लिए हामी की तरह काम कर गई। मैं अपने ख्यालों में थी कि राजीव सर ने अपने होंठ मेरे होठों पर रखे और मेरा ये सपना उनके होठों के स्पर्श से टूट गया। दोस्तों, मैरिड वुमेन 6 की कहानी के अगले भाग में मैंने अपने मस्त जवानी के नशे को कैसे तोड़ा खुलकर बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी।